पाठ 29 अध्याय 25 और 26। जैसे ही हम बालाम और बालाम के बारे में अपने अध्ययन को पीछे छोड़ते हैं, हम यहोवा के खिलाफ कई विद्रोहों और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दैवीय प्रतिशोधों में से एक के साथ गिनती की ओर बढ़ते हैं। कोई सोच सकता है कि जंगल में लगभग 40 साल रहने के बाद जंगल के तंबू को हमेशा ध्यान में रखते हुए एक सक्रिय पुजारी एक अडिग सातवें दिन का सप्त नियमित त्योहार और स्मरणोत्सव और उनके नेता के रूप में हमेशा मौजूद मूसा के साथ इज़राइल ने उन सभी नियमों और आज्ञाओं का पालन किया होगा जो प्रभु ने उन्हें जीने के लिए दिए थे। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 25 में पाते हैं, यह निश्चित रूप से मामला नहीं था। गिनती अध्याय 25 पूरा पढ़ें। इज़राइल किस उतार चढ़ाव भरे रास्ते पर चल रहा है, ऊंचे शिखर फिर नीचे की ओर पहाड़ की चोटियों से घाटियों तक और फिर वापस, पवित्र आज्ञाकारिता से लेकर आकस्मिक अनादर तक, सर्वशक्तिमान की उचित पूजा से लेकर उसके विरुद्ध बरे और अत्याचारी पाप तक। जैसे ही हमने बालाम के उस प्रकरण को समाप्त किया जिसमें उसने इज़राइल पर शानदार और विजयी भविष्य सूचक आशीर्वाद की घोषणा की जो परमेश्वर की नज़र में किसी भी तरह का दोष नहीं रखता था और सभी राष्ट्रों में से प्रभु के साथ अपनी अद्वितीय और अलग पहचान की पुष्टि करता था, हम पाते हैं कि इब्रानियों ने दुश्मनों के साथ मौज मस्ती की, अपने देवताओं के साथ मौज मस्ती की और अपनी महिलाओं के साथ पार्टी की। हम इस बिंदु पर खुद से पूछ सकते हैं, क्या वे कभी नहीं सीखते? परमेश्वर के हाथों उन्हें कितनी मौतें झेलनी होंगी इससे पहले कि वे पूरी तरह से उसके प्रभुत्व के अधीन हो जाएं? खैर, एक तरफ हम देखते हैं कि इब्रानियों का कुख्यात वर्णन कठोर गर्दन वाले लोगों के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह छोटी याददाश्त का मामला कम है और लोगों के एक अलग समूह का मामला ज्यादा है जिन्हें वही सबक सीखना है जो पहले उनके बुजुर्गों को सिखाया गया था। अब तक परमेश्वर का इसराइल पर श्राप था कि मिस्र से बाहर आने वाले लोगों में से कोई भी जो जाने के समय 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, यहोशू और कालेब को छोड़कर अभी भी जीवित नहीं था। इस प्रकार जबकि प्रथम निर्गमन पीढ़ी को अपने विद्रोहों के परिणाम स्वरूप बहुत कष्ट सहना पड़ा था, यह नई पीढ़ी या तो अभी तक पैदा ही नहीं हुई थी या अपने बुजुर्गों को दी गई शिक्षाओं को आत्मसात करने में असफल रही थी। यह अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का भी जवाब दे सकता है, क्यों गिनती और बाद में व्यवस्था विवरण में निर्गमन की पुस्तक से इज़राइल और हमें को पहले से दी गई बातों को इतना दोहराया जाता है। इसका कारण वास्तव में वैसा ही है जैसा कि हमेशा से मानव जाति के साथ रहा है, हम इतिहास से कभी नहीं सीखते। ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसराइलियों की नई पीढ़ी ने यहोवा को गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए उन्हें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। पद एक हमें बताता है कि इसराइल शायद अभी भी उसी डेरे पर था जब बालाम और बालाम तीन अलग अलग पहाड़ियों पर खड़े थे, इब्रानियों की इस विशाल भीड़ को देख रहे थे। राजा बालाम गैर यहूदी जादूगर बालाम को इसराइल को उसके लिए शाप देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। यह शित्तीम नामक स्थान पर हुआ था जिसका शाब्दिक अर्थ है बबूल का पैर। आइए यह समझकर शुरू करें कि यह बहुत ही असंभव है कि जिस समय यह हो रहा था उस समय इसराइल को बालाम और बालाम के साथ हुई धोखाधड़ी का कोई अंदाजा नहीं था। इसका मतलब यह है कि इसराइल के लोगों को उस समय कोई अंदाजा नहीं था कि राजा बालाम इसराइल को आध्यात्मिक रूप से शापित करने के लिए उग्र रूप से काम कर रहा था। वास्तव में यह परंपरा है कि जब बालाम मेसोपोटामिया वापस जाने के लिए जा रहा था तो उसने सुझाव दिया कि इसराइल को हराने के वैकल्पिक तरीके के रूप में राजा बालाम अपने लोगों के साथ इसराइल में घुसपैठ करे और उनसे दोस्ती करे ताकि इसराइल को धीरे धीरे यहोवा से दूर किया जा सके। तत्काल लक्ष्य इसराइल को मोआब के देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करना होगा क्योंकि यह गठबंधन और सम्मान का एक सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट संकेत था। निश्चित रूप से हमें बताया गया है कि इब्रानियों पुरुषों ने मोआबी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। लगभग निश्चित रूप से ये युवा और योग्य पुरुष थे, लेकिन इसमें कुछ मध्यम आयु वर्ग के लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अपनी पत्नियों के अलावा अन्य महिलाओं के साथ घूमने के लिए स्वतंत्र महसूस करते थे। इसके अलावा पद दो की शुरुआत में कहा गया है कि इस वेश्यावृत्ति के लिए सेटिंग मोआब के देवताओं के लिए एक बलिदान थी। यहां जो हो रहा है वह बाल के लिए एक उत्सव है, या जैसा कि उसे इस युग के दौरान ट्रांस यर्दन क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर केमोश कहा जाता था। और यह वेश्यावृत्ति संभवतः धार्मिक वेश्यावृत्ति की मूर्ति पूजक प्रथा के इर्द गिर्द घूमती थी, जो उस समय के अधिकांश रहस्यमय धर्मों में आम थी। केमोश, जिसे यहां बाल प्योर या बेहतर बाल ऑफ प्योर कहा जाता है, प्रजनन क्षमता से जुड़े कई देवताओं में से एक था, इसलिए पवित्र सेक्स किसी भी प्रजनन देवता या देवी के सम्मान में हर उत्सव के मूल में था। इसलिए हमारे पास परमेश्वर की आज्ञाओं के दो बड़े उल्लंघन हैं। इज़राइल यहोवा के अलावा अन्य देवताओं की लालसा कर रहा था और वे व्यभिचार कर रहे थे, और कुछ मामलों में व्यभिचार, और ये सब विदेशी महिलाओं के साथ कर रहे थे। ये सब मूर्ति पूजा की श्रेणी में रखा जा सकता है। मैं आपके लिए एक समानता दर्शाना चाहता हूं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हम सभी को थोड़ी असुविधा होगी। कभी कभी हमें बाइबल में जो कुछ हो रहा था उसकी गलत मानसिक तस्वीर मिल जाती है, इसलिए हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर उससे जुड़ना मुश्किल हो सकता है।
बाइबल में बहुत से महान निर्णायक क्षण सूक्ष्म थे और पहली बार में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं थे। यह सामान्य रूप से मानव जाति के इतिहास में ऐसा ही है। जब वे पहले तीर्थयात्री प्लायमाउथ रॉक पर उतरे तो यह रडार स्क्रीन पर एक छोटी सी झलक थी। मुट्ठी भर लोगों ने नई दुनिया तक पहुंचने और वहां एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक जहाज का आदेश दिया। वे इसे किसी अन्य राष्ट्र के लिए दावा करने नहीं आए थे जो ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण होता। वे केवल धार्मिक उत्पीड़न, मुख्य रूप से यूरोप में संस्थागत चर्च द्वारा, से बचने के लिए आए थे। इस प्रकार यहां मोआब में मोआबियों के साथ बातचीत करने में इज़राइल के लोगों की हरकतें पहले तो स्वागत योग्य और स्वाभाविक लगती होंगी। ये दोनों पक्षों के लिए शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और पड़ोसी जैसा लगता होगा। मोआब उन बर्बर लोगों का घर नहीं था जो अपने आसपास आने वाले सभी लोगों के साथ भयानक काम करना चाहते थे। वे बस सामान्य लोग थे। इज़राइल के युवकों के लिए किसी दूसरी और अलग, संभवतः आकर्षक संस्कृति की कुछ सुंदर लड़कियों की जासूसी करना मानवीय रूप से अपेक्षित था।
मोआब ने कई देवताओं की पूजा की, जिनमें मुख्य देवता बाल भी शामिल था। इज़राइल का उद्देश्य विदेशियों को धर्मांतरित करना नहीं था, क्योंकि वे वादा किए गए देश की ओर यात्रा कर रहे थे और उन्हें निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगा। ऐसा करने का प्रयास करना उनका कर्तव्य ऐसा नहीं लगा है, इसलिए लोग तो लोग ही हैं। इज़राइल ने मोआबियों की मान्यताओं के प्रति कुछ सम्मान दिखाया, भले ही वे उनसे सहमत न हों, अन्यथा वे सभ्य तरीके से कैसे साथ रह पाते।
फिर भी पवित्र शास्त्रों में कभी भी परमेश्वर के अनुयायियों को अन्य संस्कृतियों के झूठे देवताओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए नहीं सिखाया गया है, यहां तक कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साधन के रूप में भी नहीं। और इसका कारण यहां गिनती 25 के पहले दो पदों में प्रदर्शित किया गया है। हमेशा मूर्ति पूजक तरीकों और उनके देवताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता, उन तरीकों में से कुछ को अपनाने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तरीकों को कमजोर करने या विकृत करने में बदल जाती है।
परमेश्वर इसे वेश्यावृत्ति कहते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके द्वारा अलग किए गए लोगों द्वारा की गई मूर्ति पूजा विश्वासघात है। वेश्यावृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि इज़राइली पुरुष मोआबी वेश्याओं के पीछे जा रहे थे, हालांकि कुछ लोग ऐसा करते थे, बल्कि इसका अर्थ है कि एक विदेशी लोगों के साथ अधिक से अधिक घनिष्ठ संबंध रखने से, जिनकी संस्कृति अन्य देवताओं का सम्मान करने के बारे में थी, इज़राइल के पुरुष स्वतः ही यहोवा के प्रति विश्वासघाती हो रहे थे।
मैं 21वीं सदी की ओर तेजी से आगे बढ़ता हूं। ईसाई और यहूदियों से ज्यादा कोई भी समूह ऐसे लोगों के विशाल समूह के साथ संबंध बनाने का तरीका नहीं खोज रहा है जो खुले आम झूठे परमेश्वर की पूजा करते हैं। बार बार ईसाई और यहूदी नेता और ईसाई मान्यताओं का दावा करने वाले राजनीतिक नेता कहते हैं कि हमें इस्लाम, कम से कम शांतिपूर्ण इस्लाम के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, और बात यह है कि यह सम्मान इस्लाम के परमेश्वर के प्रति सम्मान दिखाने से शुरू होता है, क्योंकि मुसलमान यही मांग करते हैं। हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने ईसाई धर्म को सबसे आगे रखता है, लेकिन 9 नवंबर 2010 के कुछ समय बाद ही वह मस्जिद में खड़ा हो गया और लाखों दर्शकों ने उसे देखा और सुना। उसने पूरी दुनिया को बताया कि अल्लाह ईसाई परमेश्वर के समान ही है, और ईसाई धर्म और इस्लाम को एक दूसरे की मान्यताओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि यह शांति और सह अस्तित्व का स्पष्ट मार्ग है। हमें एक दूसरे के लिए समझौता करना चाहिए और छूट देनी चाहिए। तालियां जोरदार थीं और दुनिया ने इसके लिए उसकी प्रशंसा की, जैसा कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के अधिकांश लोगों ने किया। आखिरकार क्या यीशु ने किसी भी कीमत पर शांति का उपदेश नहीं दिया था? मोआब में धर्म त्याग और मूर्ति पूजा का घातक चक्र धीरे धीरे और बिना किसी की नजर में आए शुरू हो गया, जब इब्रानी पुरुषों ने मोआबी महिलाओं के साथ महज परिचय बनाया। बहुत जल्द, जैसा कि पद 2 में कहा गया है, मोआबी महिलाओं ने वही किया जो स्वाभाविक था। उन्होंने अपने नए इब्रानी दोस्तों को अपने कुछ राष्ट्रीय उत्सवों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सामाजिक होने का एक ईमानदार और ईमानदार प्रयास। और बेशक, जैसा कि इज़राइल के मामले में था, मोआब के सभी उत्सव उनके किसी न किसी देवता के इर्द गिर्द घूमते थे। इज़राइल के कई लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं थी, और मोआब के कुछ धार्मिक उत्सवों में भाग लेने में उन्हें यहोवा की पूजा के साथ कोई संघर्ष नहीं दिखा। उनके लिए वे मोआबियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे। हम आज भी उन्हीं कारणों से वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी धर्म मानवतावाद का आह्वान करता है, और ईसाई इस्लाम के प्रति सहिष्णुता का हाथ बढ़ाने के लिए यीशु द्वारा दिए गए प्रेम और शांति का आह्वान करते हैं। इस तरह के मानवीय प्रयासों और उनकी आज्ञाओं के दुरुपयोग के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया गिनती 25:3 में अच्छी तरह से बताई गई है। एदोनाई का क्रोध इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा। इन कृत्यों को तब भी और आज भी घोर पाप तथा सबसे बुरे पाप माना जाता है, इसलिए सजा अपराध के अनुरूप होगी। यह स्पष्ट है कि प्रभु और इसलिए इन शास्त्रों के लेखक जो कुछ हो रहा है उसे यहोवा के विरुद्ध इज़राइल के राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखते हैं। इस धर्म त्याग के लिए पूरे इज़राइल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रभु की प्रतिक्रिया त्वरित और कठोर है। वह आदेश देता है कि लोगों के प्रमुखों या मुखियाओं को पहले दंडित किया जाए। अब हम इस बात को लेकर थोड़ी परेशानी में हैं कि यहां वास्तव में क्या अभिप्रेत था, क्योंकि इब्रानी में शब्द अस्पष्ट हैं। ये कहता है कि लोगों के रोष, इब्रानी में सिर, को प्रतिशोध के लिए चुना जाना चाहिए। आम तौर पर इसका मतलब आदिवासी राजकुमारों, शाब्दिक रूप से 12 गोत्रों में से प्रत्येक पर शीर्ष व्यक्ति, और संभवतः कुछ गोत्र नेताओं से लिया जाता है। इसके अलावा कई अनुवाद कहते हैं कि परमेश्वर ने आदेश दिया कि इन आदिवासी सरदारों को लटका दिया जाए गर्दन से, जिसका अर्थ है कि उन्हें फांसी पर लटकाकर मार दिया जाए। यह संदिग्ध है कि फांसी, जैसा कि हम सोचते हैं, वह वही था जो परमेश्वर के मन में था। गला घोंटना सबसे अमानवीय माना जाता था, और भोजन के लिए जानवरों को मारने के तरीके के रूप में भी इसकी अनुमति नहीं थी, इसलिए संभवतः पुरुषों के लिए यह आदेश नहीं दिया गया था, चाहे उनका पाप कितना भी भयानक क्यों ना हो। इसलिए यह एक मानक शब्द है जिसका अर्थ है एक खंभे पर लटका दिया जाना, जो उस युग के लिए काफी सामान्य था। यह इतना सामान्य था कि व्यवस्था विवरण में इससे निपटने के लिए एक कानून बनाया गया था। व्यवस्था विवरण 21:22 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी मृत्युदंड के अपराध का दोषी है और उसे मृत्युदंड दिया जाता है और आप उसे खंभे पर लटकाते हैं, तो आपको उसकी लाश को रात भर उस खंभे पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उसी दिन दफना देना चाहिए। लेकिन इससे हमारी समस्या का केवल आधा ही हल होता है। क्या प्रभु ने वास्तव में इज़राइल के सभी जनजातीय सरदारों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था? कुल मिलाकर रब्बी और ऋषिगण कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। यह पाठ और कहानी के संदर्भ का सबसे स्पष्ट अर्थ बताता है और इससे मिलने वाला सबक भी स्पष्ट है। जब राष्ट्रीय या कॉरपोरेट पाप शामिल होता है तो नेतृत्व सबसे अधिक दोषी होता है और उसे सबसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र इसे एक कदम और आगे ले जाता है। ये केवल इतना ही नहीं है कि नेताओं का वध राष्ट्रीय मूर्ति पूजा के लिए दंड का मामला है, ये इसराइल के लिए प्रायश्चित का मामला है कि नेताओं को मार दिया जाए, जैसा कि पद 4 के अंत में कहा गया है, जब यह कहता है कि इन लोगों को मर जाना चाहिए ताकि प्रभु का क्रोध इसराइल से दूर हो जाए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आधुनिक चर्च ने अस्वीकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है, हम यहां तक कह चुके हैं कि नए नियम का परमेश्वर अब हमें दंडित भी नहीं करता। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वचन में कहीं भी उस सिद्धांत को खोजें। वह विश्वास योग्य विश्वासियों के साथ जो नहीं करता है वह है हमें दोषी ठहराना, अर्थात अनंत दंड। लेकिन यह सोचना कि किसी तरह हम प्रभु के न्यायपूर्ण अनुशासन से मुक्त हैं, जो बहुत दर्दनाक हो सकता है, खतरनाक रूप से पवित्र शास्त्र के बाहर है। हमने लैव्य व्यवस्था में अत्याचारी पाप के सिद्धांत का सामना किया है और इस पाप के लिए एकमात्र प्रायश्चित उस व्यक्ति का खून है जिसने इसे किया है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार का पाप है जिसके लिए परमेश्वर पापी की मृत्यु के बदले में किसी पशु बलि के खून को स्वीकार नहीं करेगा। जब हम वाक्यांश सुनते हैं उसका खून उसके अपने सिर पर है, तो इसका यही अर्थ है किसी प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है।
इसलिए मूसा ने कुछ अन्य नेताओं से कहा कि वे जाकर उन लोगों को मार डालें जिन्होंने खुद को बाल पोर यानी मोआब के देवता के हवाले कर दिया। आइए यहां एक पल के लिए रुकें। यह उन जगहों में से एक है जहां प्राचीन ऋषियों को कुछ परेशानी हुई थी, क्योंकि मूसा ने इन कुछ नेताओं को जो करने का आदेश दिया था वह नहीं था जो प्रभु ने मूसा को करने के लिए कहा था। संक्षेप में, यहोवा ने सभी आदिवासी राजकुमारों को अपने लोगों को उनके साथ रहने की अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया। कमोश मोआब का बाल, भले ही वे राजकुमार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं थे, हालांकि मूसा ने पलटकर आदेश दिया कि केवल उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने वास्तव में मूर्ति पूजक अनुष्ठानों में भाग लिया था। यह पहली बार नहीं है जब मूसा ने प्रभु के आदेशों में से किसी एक से विमुख हुआ हो। मूसा ने ऐसा क्यों किया होगा? वह उन नेताओं को मारने के लिए इतना अनिच्छुक क्यों था? बहुत विस्तार में न जाने के लिए मैं आपसे केवल उन दृश्यों के बारे में सोचने के लिए कहता हूं जिन्हें हम नियमित रूप से अपने टीवी पर इराक से देखते हैं। आदिवासी सदस्य और मुस्लिम संप्रदाय के सदस्य अपने नेताओं की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और नेता अपनी स्थिति और शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने लोगों की किसी भी राशि का बलिदान कर सकते हैं। यह आदिवासी व्यवस्था का सार है। यह अकल्पनीय है कि एक इब्रानी आदिवासी राजकुमार, लोगों की एक पूरी गोत्र का मुखिया, स्वेच्छा से अपने स्वयं के निष्पादन के लिए प्रस्तुत होगा। यह भी अकल्पनीय है कि उस गोत्र के लोग चुपचाप खड़े होकर ऐसा होने देंगे। इसलिए एक मानवीय सरकार के दृष्टिकोण से मूसा ने एक आसान रास्ता अपनाया और वह जो उसे व्यक्तिगत रूप से बेहतर लगा, आदिवासी राजकुमारों जिन्हें परमेश्वर ने उसे मारने के लिए कहा था को इस धर्म त्याग के लिए दंड के रूप में उनके अधीन कुछ कमतर नेताओं को मारने के लिए कहें। जिस किसी ने भी कॉरपोरेट प्रबंधन में अधिक समय बिताया है वह इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझता है।
हालांकि अभी तक यह नहीं कहा गया है कि इसराइलियों के बीच अब महामारी फैल रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र पर उनके विद्रोह के लिए अपना क्रोध उंडेला था। इसलिए विचार यह है कि इन नेताओं की मृत्यु परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करेगी और बहुत अधिक इसराइलियों के मरने से पहले महामारी समाप्त हो जाएगी। इस सब के बीच जब लोग हजारों की गिनती में मर रहे थे और बाकी लोग मूर्ति पूजक के साथ पार्टी कर रहे थे, एक इब्रानी आदमी एक मिद्यानी महिला को शिविर में लाया और उसे अपने रिश्तेदार से मिलवाया। हमने पिछले हफ्ते या उससे पहले चर्चा की थी कि इस समय मोआब और मिद्यानियों के बीच किसी तरह का गठबंधन था। वास्तव में कुछ मिद्यानियों ने मोआब के राजा बालाम द्वारा प्रसिद्ध जादूगर बालाम को लाने के लिए मेसोपोटामिया तक भेजे गए आधिकारिक दल का भी हिस्सा थे। इसलिए इतिहास के इस क्षण में परमेश्वर मोआबियों और मिद्यानियों को एक ही नाव में रखते हैं, परमेश्वर के दुश्मन। यह कि यह इजरायली इस समय शिविर में एक विदेशी को लेकर आए और जंगल के तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़े मूसा के ठीक सामने उसे बेशर्मी से घुमाए, इसका मतलब यह है कि इजरायल ने एक बार फिर मन की विकृत स्थिति को झेला था। स्वाभाविक रूप से चूंकि सभा का तंबू वह स्थान था जहां याजक काम करते थे, फिनहास जो तंबू के पहरेदारों का प्रभारी याजक था ने इस इब्रानी पुरुष और मिद्यानी महिला को घूमते हुए देखा और वह प्रभु की पवित्रता के प्रति उनकी उपेक्षा पर क्रोधित हो गया। उसने एक भाला उठाया, निसंदेह तंबू क्षेत्र के चारों ओर तैनात उसके सैकड़ों लेवी पहरेदारों में से एक के हाथ से, और इस कामुक झोरे का पीछा करते हुए इस इब्रानी पुरुष के तंबू तक पहुंचा जो पवित्र तंबू के बहुत करीब था। और जब यह जोरा व्यभिचार कर रहा था, पीनहास ने भाले से उन दोनों को मार डाला। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की जरूरत है कि वह एक ही बार में एक ही भाले से इस जोरे को कैसे मार सकता था, और बस इतना ही कि हम समझ सकें, शास्त्र कहता है कि उसने उनके पेट में छुरा घोंपा। यह प्रजनन अंगों के लिए एक इब्रानी व्यंजना है। विचार यह है कि वे उन अंगों के साथ पाप कर रहे थे और इस तरह से वे मर जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह वह कार्य था जिसने प्लेग को रोका, लेकिन इससे पहले 24,000 लोग इससे मर चुके थे। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ को इस पुजारी द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने और इस जोरे को मारने से तो रिपरेशानी होगी। वैसे तो प्राचीन रब्बियों को भी यही लगा था। उन्होंने सभी तरह की चालें चलीं ताकि पीनहास इस सब में अच्छा न लगे। जो भी हो, पद 10 में पीनहास को इन दो विद्रोहियों, एक इब्रानी और एक विदेशी की जान लेने के लिए यहोवा द्वारा सम्मानित किया जाता है। स्थिति का सार यह है कि पीनहास के पास वह था जिसे हम ईसाई धार्मिक क्रोध कहते हैं। ऐसा नहीं था कि पीनहास व्यक्तिगत रूप से इतना नाराज था कि वह तब आगे आया जब कोई और प्रभु के सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। प्रभु घोषणा करते हैं कि पीनहास ने जो किया वह न केवल हत्या नहीं थी, बल्कि वास्तव में यह प्रायश्चित का आवश्यक कार्य था जिसने यहोवा को इसराइल को उनके अत्याचारी पाप के लिए मिटाने से रोका। इससे भी अधिक, यहोवा ने कहा कि मैं पीनहास को अपना शालोम देता हूं। उसने पीनहास को आशीर्वाद दिया। अब्बा ने फिर घोषणा की कि उसके निर्णायक कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में पीनहास लेवियों के गोत्र का पुजारी होगा। इससे वास्तव में कुछ नहीं बदला, इसने बस कुछ स्पष्ट कर दिया। पीनहास एलियाजर का बेटा था और एलियाजर हारून का बेटा था। हारून मर चुका था और एलियाजर अब महायाजक था, इसलिए एलियाजर के बेटों में से एक स्वाभाविक रूप से अगला महायाजक बनेगा। प्रभु ने बस ये तय किया कि वह कौन सा बेटा होगा पीनहास। हम देखते हैं कि अध्याय 25 का पूरा स्वर तब बदल जाता है जब पीनहास उस जोरे को मार डालता है। महामारी समाप्त हो जाती है, प्रभु का न्याय पूरा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि इस चौंकाने वाले कृत्य ने इसराइल को उसके होश में ला दिया है। वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाली पीढ़ी को अभी अभी परमेश्वर की दयालुता और उसकी कठोरता का एक गंभीर पाठ मिला था। जो लोग लापरवाही से और बेरहमी से उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, उन्हें नष्ट करने की उसकी कठोरता, और जो लोग अभी तक उसके क्रोध से नहीं मरे थे, उनके लिए प्रायश्चित का साधन प्रदान करने में उसकी दया। एक ऐसा पाठ जो उनके माता पिता ने एक से अधिक अवसरों पर प्राप्त किया था, लेकिन उनके माता पिता को कभी भी कनान में प्रवेश करने से भी रोका गया था। अध्याय का अंत प्रभु द्वारा मिद्यानियों पर युद्ध की घोषणा से होता है, जो एक ऐसे लोग थे जिन्होंने आसानी से बहकाए जाने वाले इब्रानियों को अन्य देवताओं की पूजा करने
और अवैध यौन क्रियाकलापों में शामिल होने के लिए बहकाया। मिद्यान और स्वाभाविक रूप से उनके सहयोगी मोआब के खिलाफ आने वाले युद्ध का मतलब था कि इसराइल की सेना को हथियार उठाने की आवश्यकता होगी, और जैसा कि युद्ध या विजय शुरू करने से पहले हमेशा किया जाता था, जनगणना की जाएगी। जनगणना से पुरुषों को खुद को हथियारबंद करने के लिए सतर्क किया जाएगा और नेता को अपने सैनिकों की गिनती करने का मौका मिलेगा। यही वह बात है जिससे गिनती 26 का संबंध है।
गिनती अध्याय 26 पूरा पढ़ें। अब हम एक राष्ट्र के रूप में इसराइल के निर्माण में एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, कनान की भूमि पर विजय। गिनती की पुस्तक के अंतिम 11 अध्याय युद्ध, समझौता करने और फिर वादा किए गए देश पर कब्जा करने के लिए बार बार आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया से संबंधित हैं।
गिनती के पहले 2 अध्यायों में की गई पहली जनगणना निर्गमन की पहली पीढ़ी की थी, एक पीढ़ी जो अनिवार्य रूप से अब मौजूद नहीं है। गिनती अध्याय 26 में हमने जिस जनगणना के बारे में पढ़ा वह इसराइल की दूसरी पीढ़ी, नई पीढ़ी की है, और यह जनगणना 2 प्राथमिक उद्देश्यों के लिए है। यह निर्धारित करना कि प्रत्येक गोत्र कितने सैनिकों को इकट्ठा करेगी, और फिर यह निर्धारित करना कि प्रत्येक गोत्र को कितना क्षेत्र मिलेगा जब कनान को इसराइल के गोत्रों के बीच विभाजित किया जाएगा।
पहली जनगणना और आमतौर पर सभी बाइबल जनगणनाओं की तरह केवल पुरुषों की गिनती की गई, और फिर केवल उस आयु के पुरुषों की जो हथियार उठा सकते थे और लड़ सकते थे। हालांकि इसके विपरीत हम देखेंगे कि जब निर्गमन की पहली पीढ़ी लगातार रो रही थी, विद्रोह कर रही थी और मिस्र में अच्छे पुराने दिनों की लालसा कर रही थी, तो नई पीढ़ी अधिक वफादार थी, अपने मिशन के प्रति अधिक भावुक थी, और 600 साल पहले अब्राहम से जो वादा किया गया था उसे हासिल करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए अधिक इच्छुक थी, अपनी खुद की भूमि और इसे भरने के लिए अनगिनत लोग।
इसराइल यरीहो के ठीक पूर्व में यर्दन नदी के पूर्वी तट पर डेरा डाले हुए था। इसमें कोई संदेह नहीं कि 500 मील के भीतर किसी भी दिशा में हर कोई जानता था कि 3 मिलियन इब्रियों की यह विशाल आबादी कहां है। वे बहुत अधिक गिनती में थे और उनके कारनामे इतने प्रसिद्ध थे कि अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं था। चूंकि हारून मर चुका है और उसे माउंट हौर पर दफनाया गया है, इसलिए उसके बेटे नए महायाजक एलियाजर से सीधे यहोवा ने बात की और उसे बताया कि इस नई जनगणना को कैसे संचालित किया जाए। प्रभु ने पूरे इसराइली समुदाय मिस्र से बाहर आए परिवारों की गिनती करने के लिए कहा, लेकिन जैसा कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि इसराइल के पूरे समुदाय में अब लेवी गोत्र शामिल नहीं है, इसलिए वास्तव में वे जनगणना का हिस्सा नहीं होंगे, हालांकि उनके लिए विशेष रूप से एक अलग जनगणना आयोजित की जाएगी। हम जनगणना के हर पहलू की जांच नहीं करेंगे, मैं सिर्फ कुछ उत्कृष्ट विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा।
सबसे पहले पद 8 से 11 में हम देखते हैं कि रूबेन और कोरह के वंशज बचे हुए हैं। इसका कारण यह है कि रूबेन और कोरह के वंश के विरुद्ध प्रभु का भयंकर क्रोध तब हुआ जब धरती फट गई और उन्हें और यह उस समय दिखाई दिया, उनके पूरे परिवार को निगल गई। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ लोग बच गए थे क्योंकि उनके वंश के नाम सूचीबद्ध हैं। वास्तव में कोरह का वंश लेवियों का एक महत्वपूर्ण वंश बन गया क्योंकि वे मंदिर में गायक बन गए।
सूची के अंत में हमें अंतिम गिनती मिलती है, 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के 601,730 पुरुष जो सेना का हिस्सा बनने में सक्षम है।
अब आपके सामने गोत्रों के चार्ट को देखें। हम पाते हैं कि कुछ गोत्रों में वृद्धि हुई है जबकि अन्य में कमी आई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लगभग 40 साल पहले की तुलना में अब लगभग 1,800 पुरुष कम है। यह जरूरी नहीं है कि इसराइल कुल मिलाकर बहुत कम आबादी वाला था, यह हो सकता है और यह संभवत था कि यह बहुत कम उम्र की आबादी थी जिसमें बहुत सारे बच्चे पैदा हुए और उन बड़े बच्चों की जगह ले ली जो मूल रूप से मिस्र से बाहर आए थे। जब आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम 1/4 या 1% के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसराइलियों के विरुद्ध अनेक युद्धों, महामारियों और न्याय दंडों के बावजूद जनगिनती समान बनी रही। केवल गोत्रों के बीच यह अंतर रहा कि कौन बढ़ा और कौन घटा। हम चार्ट से देख सकते हैं कि मनुष्य की जनगिनती में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जो उन 40 वर्षों के दौरान 60% से अधिक थी। पैमाने के दूसरे छोर पर शिमोन था, जो नष्ट हो गया था। शिमोन का गोत्र अब तक का सबसे छोटा गोत्र था, जिसने अपनी जनगिनती का 60% खो दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु के हाथ ने वृद्धि और कमी का मार्गदर्शन किया, लेकिन यह भी निश्चित है कि यह अपने आप में अलौकिक नहीं था। संभवतः शिमोन ने न केवल जन्मों की तुलना में मृत्यु की अत्यधिक मात्रा का अनुभव किया, बल्कि अपने जनजातीय सदस्यों के अन्य अधिक मजबूत इजरायली गोत्रों में शामिल होने का भी सामना किया। इसके विपरीत मनुष्य की जन्मदर 11 अन्य गोत्रों की तुलना में थोड़ी बेहतर और मृत्यु दर कम थी। लेकिन जैसे ही वे निर्गमन में सबसे बरी कबीले के रूप में शुरू हुए और यूसुफ के पुत्रों के रूप में बहुत अधिक शक्ति रखने के कारण, यह स्वाभाविक था कि अन्य छोटी गोत्रों और विशेष रूप से छोटे शिमोन को मनुष्य जैसी अधिक प्रभावशाली गोत्र का हिस्सा बनना आकर्षक लगेगा। पद 52 में जनगणना करने के दो मुख्य कारणों में से एक का उपयोग किया गया है, भूमिका विभाजन, और दो प्रतीत होता है कि विरोधाभासी मानदंड हैं, जिनका उपयोग मूसा द्वारा कनान को विभाजित करने के लिए किया जाना है। एक, क्षेत्र का आकार गोत्र के आकार के अनुपात में होगा, और दो, भूमि को चिट्ठी द्वारा विभाजित किया जाएगा। स्पष्ट प्रश्न यह है, यह एक ही समय में दोनों तरह से कैसे हो सकता है? क्या चिट्ठियों का चयन एक साधारण भाग्य का खेल था, या जैसा कि इसराइलियों ने इसे देखा, परमेश्वर की कृपा थी जो चमत्कारिक रूप से प्रत्येक गोत्र की आबादी के साथ मेल खाने वाली थी? नहीं, पुराने समय के ऋषियों का कहना है कि यह कैसे काम करता था, प्रत्येक गोत्र का सामान्य स्थान जहां वह आम तौर पर कनान में स्थित थी लॉटरी द्वारा निर्धारित किया जाता था, लेकिन वास्तविक जनगिनती आकार निर्धारित करती थी। कनान के कुछ क्षेत्र अधिक उपजाऊ थे और कुछ ऐसे थे जो ज्यादातर रेगिस्तानी थे। तटीय क्षेत्र थे जहां शिपिंग और मछली पकड़ने की अनुमति थी, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी क्षेत्र थे जो चराई के लिए उपयुक्त थे। व्यापारियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित व्यापार मार्गों के साथ साथ अन्य स्थान थे जो कठिन दुश्मनों के करीब थे। अतः चिट्ठी से क्षेत्र का निर्धारण होगा, और फिर मूसा उस क्षेत्र में प्रत्येक गोत्र की सीमाओं का निर्धारण इस नियम के अनुसार करेगा कि गोत्र जितनी बरी होगी उसकी सीमाएं उतनी ही विस्तृत होंगी।
गिनती 26 का अंतिम भाग लेवियों की पूरी तरह से अलग जनगणना से संबंधित है, और उनके कुलों को सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें अलग अलग सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि एक, प्रभु उन्हें अब इसराइल का हिस्सा नहीं मानते हैं, और दो, इस तरह वे भूमि के हकदार नहीं थे, प्रभु स्वयं उनका हिस्सा थे। लेवियों को 12 गोत्रों द्वारा वित्त पोषित और समर्थित किया जाना था। यदि आप लेवी को इसराइल के एक गोत्र के रूप में गिनते हैं तो 13 गोत्रों होंगी, और इसीलिए उनकी जरूरतों को जो प्रदान किया जाएगा उससे परे छोटा माना जाता था। इसके बजाय लेवियों को 12 गोत्रों के क्षेत्रों में फैले 48 शहर दिए गए थे।
पद 62 में हम देखते हैं कि उनकी गिनती 23,000 पुरुष थी। हालांकि ये गिनती भ्रामक है, क्योंकि इसमें एक महीने की उम्र से लेकर उससे ऊपर के सभी पुरुषों की गिनती की गई है। 12 गोत्रों की जनगणना में निचली सीमा 20 वर्ष और ऊपरी सीमा लगभग 50 वर्ष थी, इसलिए लेवी आसानी से सभी गोत्रों में सबसे छोटी थी। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि इतिहास के इस बिंदु तक याकूब के दूसरे और तीसरे पुत्र, जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पूर्व शेखेम के असहाय पुरुष नागरिकों पर बदला लेने के लिए भयानक और अधर्मी हमला किया था, अब उन सभी में सबसे कमतर थे।
उत्पत्ति 49 में हमने याकूब के प्रत्येक पुत्र पर इसराइल कहलाने वाले भविष्य सूचक आशीर्वाद का अध्ययन किया। शिमोन और लेवी ही एकमात्र पुत्र थे जिन्हें याकूब ने एक साथ समूहीकृत किया और उन्हें एक ही आशीर्वाद दिया, और यह आशीर्वाद से ज्यादा एक अभिशाप था। मैं इसे आपके लिए याद दिलाना चाहता हूं। उत्पत्ति 49:5, शिमोन और लेवी तो भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के हथियार हैं। 6, मेरा मन उनकी सभा में न जाए, मेरी महिमा उनकी मंडली में न मिले, क्योंकि उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा से बैलों को लंगर आकर दिया। 7, शापित हो उनका क्रोध क्योंकि वह भयंकर है, और उनका प्रकोप क्योंकि वह क्रूर है। मैं उन्हें याकूब में तितर बितर कर दूंगा और इसराइल में छिन्न भिन्न कर दूंगा।
यह लगभग 5 शताब्दी पुराना आशीर्वाद उसी क्षण साकार हो रहा था जब अब्राहम को दिया गया 6 शताब्दी पुराना वादा भी पूरा हो रहा था। अध्याय इस बात की याद दिलाते हुए समाप्त होता है कि जब इसराइल मिस्र से भागा था तब 20 वर्ष से कम आयु के पुरुषों में से केवल यहोशू और कालेब ही बचे थे। जंगल में उन 40 वर्षों के दौरान 6 लाख पुरुष मर गए थे। यार, ये बहुत सारे अंतिम संस्कार हैं। यहोशू और कालेब उन 12 जासूसों में से 2 थे जिन्होंने 38 साल पहले इसराइल के नेताओं को कनान में आगे बढ़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की थी।
अगले सप्ताह हम अध्याय 27 शुरू करेंगे।